पृष्ठ संख्या 116। शनयांग घटना के जवाब में जापानी प्रतिक्रिया तथा राजनैतिक आपत्ति का प्रभाव जापान की इच्छा के अनुकूल पड़ा। चियांग चियेसरा ने यह जानते हुए भी कि उनकी राष्ट्रवादी क्रांति तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक मंचूरिया राष्ट्रवादियों के नियंत्रण में न हो, जापान को आश्वासन दिया कि राष्ट्रवादी मंचूरिया में जापान के राजनैतिक एवं आर्थिक अधिकारों का सम्मान करेंगे। लेकिन जापान के लिए मंचूरियाई समस्या का समाधान चांग तजुओलिन ही कर सकते थे और इसलिए उनके साथ समझौते के लिए बातचीत की कोशिशें जारी रही। चांग को पहले मानने की कोशिश की गई, फिर उन पर दबाव डाला गया कि वह पेचिंग छोड़कर शनयांग आ जाएं। उन्हें यह भी आश्वासन दिया गया कि राष्ट्रवादी सेनाएं उनका पीछा नहीं करेंगी। लेकिन चियांग चियेसरा के उत्तरी अभियान के पुनः आरंभ के कारण बातचीत में कई अड़चनें पैदा हो गई। अप्रैल 1928 में चियांग चियेसरा ने उत्तरी योद्धा सामंतो, जो चांग तजुओलिन के समर्थक थे, के साथ साम्राज्यवादी शक्तियों के विरुद्ध अभियान पुनः आरंभ कर दिया। इस स्थिति ने जापान के लिए कई समस्याएं पैदा कर दी जिनकी ओर तुरंत ध्यान देना अत्यंत आवश्यक था। पहली समस्या थी कि राष्ट्रीय आंदोलन के आक्रामक हो जाने के कारण शांतुंग एवं पेचिंग थियेनचिन क्षेत्र में जापान की आर्थिक रुचियों का क्या होगा? क्या इन रुचियों की रक्षा के लिए उठाए गए कदमों का बुरा असर यांगत्ज घाटी में पड़ेगा? और जो विशेष संबंध जापान ने मंचूरिया के साथ कायम किया था, उसका क्या होगा? इन समस्याओं के दो समाधानों का सुझाव दिया गया, एक राजनयिक साधनों के द्वारा बातचीत का रास्ता और दो सीधी कार्यवाही अथवा युद्ध। काफी सोच विचार करने के बाद तथा से युकाय अधिकारियों के अत्यंत दबाव के अंतर्गत तनाका ने स्वीकार किया कि जापानी रुचियों की रक्षा के लिए चिनान में अभियान दल भेजना अटल था। विदेशी सरकारों को अपने इरादों के बारे में आश्वासन देकर जनरल फुकुदा हिकोसुके ने टोक्यो से बिना कोई विशेष आदेश लिए सैनिकों को छिंगताओ से देश के अंदर भेज दिया। तब तक योद्धा सामंतों की सेनाएं चिनान से पीछे हट चुकी थी और उनकी जगह राष्ट्रवादी सेनाओं ने ले ली थी। अब ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी कि दोनों सेनाओं का एक दूसरे से आमना सामना हुआ। दोनों पक्षों के नेतृत्व ने यह चाहते हुए भी कि अमन और शांति बनी रहे, एक छोटी सी घटना के कारण युद्ध भड़क गया। अब जापान ने अपने कोरियाई एवं शांतुंग सेनाओं से कुमुक भेजी। जैसा कि WF मॉर्टन ने कहा है, शक्ति के इस आखिरी प्रदर्शन में मंचूरिया के बारे में युद्ध नीति संबंधी विचार विमर्श ने भी भूमिका निभाई। स्पष्ट रूप से तनाका को उम्मीद थी कि वह जापानी सेना की उपस्थिति में चांग तजुओलिन पर मंचूरिया लौटने के लिए अतिरिक्त दबाव का प्रयोग कर सकता था। ए स्ट्रेटजिक कंसिडरेशन अबाउट मंचूरिया आल्सो प्लेड अ रोल इन दिस लेटेस्ट डिस्प्ले ऑफ फोर्स। तनाका अपेरेंटली होप टू यूज द जापानीज मिलिट्री प्रेजेंस एज एडिशनल प्लेजर इन परस्यूडिंग चंगशोलिंग टू रिटर्न टू मंचूरिया। चिनान वाक्य के दूरगामी परिणाम निकले। एक इस घटना ने राष्ट्रवादी एवं जापानी सरकार के बीच दीवार खड़ी कर दी तथा चीन के उन नेताओं के दिलों में भी जापान के लिए घृणा पैदा कर दी जो जापान के हितों की वकालत करते थे और इस तरह जापान हेतु महत्वपूर्ण थे। दूसरे, सेना मुख्यालय तथा असैनिक सरकार एवं विदेश मंत्रालय के बीच संघर्ष आरंभ हो गया। यह संघर्ष ठीक से सुलझाया नहीं जा सका। विदेश मंत्रालय ने फुकुदा द्वारा पराजित की गई राष्ट्रवादी सेना की कुछ टुकड़ियों के निशस्त्रीकरण की मांग को रद्द कर दिया। उधर जापानी विशेषकर कुआंगतुंग सेना ने सफलतापूर्वक साजिश करके पेचिंग से मंचूरिया वापस आ रहे चांग तजुओलिन का कत्ल कर दिया। यह कत्ल जापानी सरकार से बिना कोई परामर्श किए किया गया था। इस कत्ल से मोरीकाकू जैसे वह व्यक्ति काफी प्रसन्न हुए जो सेना एवं विदेश मंत्रालय में इस बात पर जोर दे रहे थे कि चांग तजुओलिन को सेवानिवृत्त होना चाहिए। दूसरी ओर इस घटना से तनाका जैसे व्यक्तियों को काफी निराशा हुई क्योंकि वे चाहते थे कि चांग के साथ विशेष प्रकार के मुवक्किल का संबंध कायम किया जाए। चांग तजुओलिन के बाद उनके पुत्र शयुए लियांग ने उनका स्थान लिया। जो कुछ भी हुआ उसके बावजूद जापान यही आशा करता रहा कि नए नेता के अधीन मंचूरिया में स्थिरता कायम हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राष्ट्रवादी सरकार ने एक तरफ कदम उठाकर 1860 की चीनी जापानी वाणिज्य एवं जहाजरानी संधि सिनो जापानीज ट्रीटी ऑफ कॉमर्स एंड नेविगेशन को रद्द कर दिया जो जापान के लिए मंचूरिया में अत्यंत महत्वपूर्ण थी। घबराकर, जो स्वाभाविक ही था, जापान ने आपत्ति व्यक्त की और दंगे होने की दशा में कार्यवाही की धमकी दी। चांग शयुए लियांग ने इसे जापान द्वारा चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कहा, लेकिन फिर भी उसने जापान को आश्वासन दिया कि चीन के साथ हुई सभी संधियों का पालन किया जाएगा। लेकिन वह कई मामलों में नानचिंग सरकार को अनौपचारिक ढंग से सहयोग देते रहे। 1920 के अंत तक उन्होंने राष्ट्रवादी सरकार की प्रभुसत्ता को भी मान लिया। फरवरी 1929 तक जापान को पूरा यकीन हो गया कि चांग शयुए लियांग मंचूरिया चीन की समस्याओं के समाधान में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। हायाशी गोनसुके, जिन्हें तनाका ने चांग शयुए लियांग के साथ बातचीत करने की जिम्मेदारी दी, ने सुझाव दिया कि जापानी सलाहकारों को वापस बुला लिया जाए। दक्षिण में मंचूरिया रेलवे पर चीनी सैनिक यातायात पर प्रतिबंध लगा दिया जाए तथा शानयांग एवं पेचिंग के बीच रेलगाड़ियों का यातायात बाधित किया जाए। उन्होंने यह प्रस्ताव भी दिया कि अंत में जापान को चीन की स्वीकृति के बिना ही रेलवे लाइनों के लिए भूमि सर्वेक्षण करना पड़ सकता है। लेकिन जापान के शंघाई स्थित दूतावास के अध्यक्ष शिगो नित्सु मामोरू ने इसका सख्त विरोध किया और कहा कि जापान के ऐसा करने से न केवल चीनी राष्ट्रवाद भड़क उठेगा, बल्कि चांग शयुएलियांग विशेषकर अपने पिता के कत्ल के कारण और भी अधिक जापान विरोधी हो जाएगा। चूंकि दोनों हायाशी और शिगो नित्सु परस्पर विरोधी नीतियों के समर्थक थे, न तो सीधे सैनिक कार्यवाही से और न ही राजनयिक ढंग से कुछ प्राप्त किया जा सका। 1929 और 1931 के बीच दशा और भी बिगड़ गई। इसके साथ साथ अमेरिका को जापानी निर्यात भारी मात्रा में कम हो गया, भारी संख्या में जापानी बेरोजगार हो गए तथा देश में भारी आर्थिक संकट पैदा हो गया। इसके साथ साथ 1931 में दक्षिण मंचूरिया रेलवे कंपनी के मुनाफे में भी कमी हो गई। ऐसे हालातों में जापान के मंचूरिया पर कारगर नियंत्रण की जरूरत महसूस की गई, लेकिन जापान की इस जरूरत पर भी उस वक्त पानी फिर गया जब 1931 की वसंत में चीनी राष्ट्रवादियों ने एक बैठक में यह संकेत दिया कि चीन द्वारा दिए गए हर प्रकार के पट्टे, विशेष अधिकार तथा रियायतें एक सही समय पर चीन को वापस लौटाने होंगे। उन्होंने 1905 की उस संधि को भी नज़रअंदाज कर दिया जिसके अंतर्गत दक्षिण मंचूरिया रेलवे कंपनी के मुकाबले में चीन रेलवे लाइनें नहीं बिछा सकता था। इस प्रकार झगड़े के काफी कारण तैयार हो गए थे, लेकिन नए विदेश मंत्री शिदेहारा अभी भी झगड़े के पक्ष में नहीं थे। उनका ख्याल था कि सैनिक झगड़े से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा और इसलिए उन्होंने चीनियों के साथ बातचीत की कोशिश की, लेकिन सिदेहारा की सभी कोशिशों पर दो घटनाओं ने पानी फेर दिया। पहला, पानी के बंटवारे को लेकर वान पाओशान में कोरियाई नागरिकों एवं चीनी किसानों के बीच झगड़ा शुरू हो गया, जिसमें सैकड़ों चीनी मारे गए, और इससे शंघाई में बड़े पैमाने पर जापान विरोधी प्रदर्शन शुरू हो गया। दूसरा, उत्तरी मंचूरिया में सर्वेक्षण कर रहे दो जापानी सैनिकों की चीनी सैनिकों ने हत्या कर दी। अभी भी दोनों पक्ष इन घटनाओं के कारण झगड़ा नहीं करना चाहते थे, लेकिन सैनिकों की हत्या ने उन लोगों को अपने विचार फिर से व्यक्त करने का मौका दिया जो यह कह रहे थे कि मंचूरियाई समस्या का समाधान केवल आक्रामक नीति द्वारा ही निकाला जा सकता था। मत्सुओका योसुके जैसे व्यक्तियों तथा मंचूरियाई युवा संघ, कोकु होनशा एवं सेयुकाय जैसे संस्थाओं की मदद से सेना मंचूरिया में किसी भी प्रकार की सीधी कार्रवाई के पक्ष में राष्ट्रीय सहमति प्राप्त करने में सफल हो गए। यामागाता के विचारों की श्वेत नस्ल कभी भी अश्वेत लोगों के साथ समानता का व्यवहार नहीं करेगी। द वाइट रेस विल नेवर ट्रीट कलर्ड पीपल एज इक्वल्स, और इसलिए केवल जापानी नस्ल ओनली द जापानीज रेसेस के पास ही शक्ति और इरादा था कि वह ऐसी चुनौतियों का मुकाबला करे। ने कुआंगतुंग सेना के इशिवारा कांजी तथा इतागाकी सेइशिरो जैसे अफसरों को प्रभावित किया। यह इशिवारा की विचारधारा में साफ प्रतीत हुआ जब उन्होंने जापान की मंचूरिया के भविष्य से बंधी नीति पर अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि अंतिम और निर्णायक युद्ध अमेरिका से होगा, जिसके लिए मंचूरिया पर जापान का कब्जा उसका मंगलाचरण होगा। जापानी सैन्यवाद की विश्व व्यवस्था की समझ का यह एक प्रत्यक्ष प्रमाण था। उन्होंने यह भी कहा कि जापान द्वारा मंचूरिया पर कब्जा पा लेने से जापान एशियाई सभ्यता का केंद्र बिंदु कहलाने का हकदार भी बन जाएगा। उनका ऐसा विश्वास जापान की चीन जापान तथा चीन रूस युद्धों में सफलता और बाद में चीन के साथ व्यवहार से उत्पन्न हुआ था। इशिवारा ने मंचूरिया पर कब्जे द्वारा जापानी अर्थव्यवस्था की खुशहाली के रास्ते और बेरोजगारी के समाधान की भी कल्पना की। यह भी कहा गया कि मंचूरिया एक ऐसी भूमि थी जिसे जापानी सैनिकों के खून ने पवित्र बना दिया था और जहां पर जापानी हितों का नुकसान हो रहा था। जैसा कि मॉर्टन ने निष्कर्ष निकाला है, कुआंगतुंग सेना में अब षड्यंत्रों की पूरी भूमिका तैयार हो गई थी। नाकामुरा की हत्या ने कुआंगतुंग सेना, जो चाहती थी कि मंचूरिया में अराजकता समाप्त करने के लिए कार्यवाही की जाए, को षड्यंत्रों के लिए काफी अच्छा अवसर प्रदान किया। अंत में सिदेहारा ने भी यह महसूस किया कि सेना की सहमति के बिना नाकामुरा की हत्या का कोई हल नहीं निकाला जा सकता। इस मामले में सेना को प्राथमिकता दिए जाने के परिणाम काफी भयानक निकले। जब इस समस्या का राजनयिक समाधान ढूंढने की कोशिश हो रही थी और कुआंगतुंग सेना पर नियंत्रण पाने के लिए कदम उठाए जा रहे थे, तभी कुआंगतुंग सेना ने इतागाकी एवं इशिवारा के नेतृत्व में कार्यवाही आरंभ कर दी। 14 से 17 सितंबर तक कुआंगतुंग सेना की फुशान स्वतंत्र दुर्ग सेना ने तिकड़म लगाई, ताकि 18 सितंबर को शनयांग के किले को कब्जे में लिया जा सके। कुआंगतुंग सेना को तब एक बहाना भी मिल गया, जबकि दक्षिण मंचूरिया रेल लाइन को एक बम धमाके में कुछ क्षति पहुंची। इससे स्वतंत्र दुर्ग सेना और चीनी सेना के बीच गोलाबारी आरंभ हो गई। 18 से 19 सितंबर 1931 की रात को कुआंगतुंग सेना ने शनयांग की मुख्य दुर्ग सेना पर धावा बोल दिया। कुआंगतुंग सेना ने अपने इस आक्रमण को चीनी सेना द्वारा दक्षिण मंचूरिया रेलवे की लाइन को उड़ाने की कोशिश की जवाबी कार्यवाही बताया, लेकिन वास्तविकता थी कि यह कुआंगतुंग सेना के अफसरों द्वारा किया गया एक षड्यंत्र था। 12 घंटे के अंदर ही शनयांग जापान के कब्जे में आ गया। वाका तुसुगी की मंत्रिमंडल की भरपूर कोशिशों के बाद भी कुछ न हो सका और युद्ध की स्थिति बनी रही। यह कोशिशें घटनाओं को केवल कुछ समय के लिए ही रोक सकती थी। मंचूरिया पर कुआंगतुंग सेना का कब्जा होना अटल था। चियांग चियेसरा ने अविरोध की नीति अपनाई, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं मामला और अधिक न बिगड़ जाए। उन्होंने राष्ट्रसंघ लीग ऑफ नेशंस में भी कई विरोध प्रकट किए। कुआंगतुंग सेना ने सितंबर और दिसंबर 1931 के बीच, यानी कि राष्ट्रसंघ के लिट्टन आयोग की स्थापना द्वारा हस्तक्षेप तक छांगछुन पर कब्जा कर लिया था, तथा उसकी कोरियाई सेना ने बिना किसी इजाजत के चल रही सैनिक कार्यवाही के समर्थन में मंचूरिया में प्रवेश किया। इसने चिलीन पर कब्जा कर लिया। यद्यपि सेना मुख्यालय ने हिदायत दी कि यदि संभव हो तो वह वहां से निकल जाए, लेकिन कुआंगतुंग सेना ने न केवल इन आज्ञाओं का पालन नहीं किया, बल्कि चीन चोऊ में सरकारी इमारतों पर गोलाबारी भी आरंभ कर दी।